Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vas Adi Gaura Bhakta Vrinda Sri Vas Adi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare आप सबका स्वागत है चौटनवासी महानुभावों का भगवत कथा में। सुबह दावलाल जी प्रश्न पूछा, दावलाल जी आया क्या? आया है दावलाल जी? नहीं, चलो फिर रखो। अच्छे प्रश्न थे, आएंगे तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रातःकाल सत्संग का विषय भगवान कहाँ मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। भगवान न मरने के बाद वैकुंठ में जाएंगे तब मिलेंगे, न भगवान घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठेंगे योग करेंगे तब मिलेंगे। तो भगवान कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? भगवान जब भगवान के भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान वहाँ अपने आप आके उपस्थित होते हैं। ये सुबह के सत्संग का सार था। नाहम तिष्ठाम विवेकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा सत्संग करते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उनके प्रश्न के उत्तर में ये संदेश दिया था। तो सत्संग का उद्देश्य होता है, जो सत्संग हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम भगवान की अनुभूति कर सकें। सत्संग में सत शब्द जो है उसके के साथ संग करना है, और सत्य जो है सत्य भगवान को कहते हैं, परम सत्य। भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि, मेरी बुद्धि परम सत्य को, हमारी बुद्धि परम सत्य को ग्रहण करे। तो सत्य भगवान है। सत्संग का उद्देश्य होता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़े। तो वो भगवान कहाँ है? भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में है, घट घट में है, हर जगह भगवान है। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे करें, उसका साधन क्या है? उसका साधन है सत्संग। तो सत्संग वो साधन है जिसमें भगवान की अनुभूति करने का एक बहुत सुलभ, बहुत सरल, बहुत आसान एक मार्ग है सत्संग। और विशेष रूप से कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत सरल है, कलौ केवल नाम आधार। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक आधार है, उससे भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ है। तो सत्संग का भी उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य है कि हम भगवान के कीर्तन करने में प्रेरित होकर उसकी रुचि हो जाए हमारी। सत्संग हमारा उत्साह बढ़ा के हमारी रुचि बढ़ाएगा कि भगवान के नाम लेने में हमें आनंद आने लगे। ये भगवान का नाम हम जपते हैं, ये हरे कृष्णा कीर्तन, ये एक बार नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से कि पिताजी बताओ कि संसार के लोगों का कलयुग में उद्धार कैसे होगा, कौन सा सरल साधन है जिसके द्वारा कलयुग के लोग अपना भला कर सकेंगे, भगवान आपको प्राप्त कर सकेंगे, क्या मार्ग है? तब ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद में बहुत प्रसन्न होकर कहा, नारद जी वत्स आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपने सबके भले की बात पूछिए, जो सबके भले की बात पूछता है वो साधु है, जो अपने की भले की बात पूछता है वो तो साधारण व्यक्ति है। सबका भला कैसे हो ये बहुत बड़ी बात है। आपने कलयुग में सबके भले की बात पूछी है तो सुनिए नारद जी, कलयुग के अंदर बहुत सरल साधन मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है उसने ये साधन बताया। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का उच्चारण करके कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। इति मतलब ये षोडशकम मन 10 और 6 16, नाम नाम मतलब भगवान के नाम, कलि कलमश कलयुग के सारे पाप ताप संताप, नाशनम नाश करने वाले। तो ब्रह्मा जी जो सबका पिता है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, उसने ये सरल साधन कलयुग के लोगों के लिए बताया है कि ये भगवान के नाम, और फिर कहा सर्व वेदेशु, सारे वेदों के अंदर मैंने छान के निकाला है कि एक ये ही सरल साधन है जिसकी जिसके उच्चारण करने से कलयुग में कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी वर्ण को हो, किसी आश्रम को, किसी देश का हो, किसी भी अवस्था में। तब पूछा नारद ने, इस मंत्र जपने के लिए कोई नियम है क्या महाराज? क्योंकि हर मंत्र जपने का नियम होता है, पवित्र होके किसी आसन के ऊपर बैठना है कि उत्तर की तरफ मुंह करने बैठना है कि पश्चिम की तरफ मुंह के हो, तो ये सब कुछ नियम होते हैं हर मंत्र के। लेकिन ये मंत्र है, कहीं भी किसी वक्त कैसे जपो, आपको इस मंत्र जपने में कोई भी प्रतिवाय नहीं लगेगा कि कहीं मंत्र उल्टा जप दिया तो उसका उल्टा असर होता है, लेकिन इस मंत्र के अंदर कुछ भी ऐसा अपराध नहीं है। तो विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का आदेश दिया है, तब से कलयुग के अंदर ये मंत्र प्रचलित है। इस मंत्र को जपने के लिए सबको अधिकार है। ये मंत्र जपने के लिए हमारे हृदय में इसकी मंत्र जपने के समय आनंद की अनुभूति हो, उसके लिए सत्संग किया जाता है। इस मंत्र जपने के लिए बहुत सुंदर शब्दों में चेतन महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है, नयनम गदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान वो दिन कब आएगा जब आपके भगवान आपका मैं नाम लूं, मेरे आंखों से अश्रु धाराएं बहें, मेरा गला रुंध जाए, मेरे सारे शरीर में रोमांच हो जाए, वो दिन कब होगा? तो भगवान का नाम जपते ऐसे हमारे पूरे शरीर के अंदर अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो जाए, आदमी आनंद में मगन हो जाए। कभी महात्मा संत कीर्तन करते थे तो उस कीर्तन में इतने मगन हो जाते थे कि संसार को ही भुला देते थे। तो भगवान से बहुत सरल रास्ता मिलने का है, भगवान के कीर्तन में अनुभूति होने लगे कि भगवान का जब हम कीर्तन करते हैं साक्षात भगवान हमारी जीभा के ऊपर आके नाचते हैं, लेकिन उस नाचते वाले को कोई मीरा की तरह देख सकता है तो जहर पी लेता है तो भी उसके लिए अमृत बन जाता है, क्योंकि उसको फिर भगवान के अलावा और कुछ दिखता नहीं। तो भगवान का ये नाम का कीर्तन कलयुग का सार है। इसके अलावा अब दूसरे दिन का सत्संग है, अपने 2 दिन के सत्संग में सवाय शास्त्र भगवद गीता के श्लोक और इस मंत्र के अलावा हमने कुछ बोला नहीं। एक मार्ग जब तक नहीं बताया जाएगा, इधर जाओ यहां से जाओ या नहीं, कहीं से नहीं, एक ही रास्ता जाना लेना है, भोजन करना है मुंह से खाना है, आंख से नहीं खा सकते, कान से नहीं खा सकते, और कोई रास्ता नहीं है भगवान के पास जाने का, एक ही रास्ता है। शास्त्र सब एक ही बात कहते हैं, उस एक बात को ठीक तरह से समझना, ये उद्देश्य हमारे शास्त्र का है। जिस श्लोक के ऊपर हमने सुबह चर्चा करने की कल से बात कर रहे हैं, 9वें अध्याय का ये श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा परुपाशते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम्। 9वें अध्याय का ये श्लोक है, आप लोग इससे परिचित हैं, किस श्लोक कभी सुना है ये? हरे कृष्ण। इससे एक श्लोक पहले है, उस श्लोक में स्वर्ग की प्राप्ति की बात है। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, जो पुण्य कर्म करके, जो यज्ञ आदि कर्म करके, भला काम करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग मिल गया। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं, स्वर्गलोक का भोग किया। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, बहुत बड़ा स्वर्गलोक है, उसमें आनंद से भोग किया। क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्षीण पुण्य, पुण्य खत्म हो गया, मृत्यु लोकम विशंति, वापस मृत्यु लोक में आते। एवं पनु परपना गता गतम काम कामा लभंती, ऐसे यहां आते हैं, अच्छे काम करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, भोग करते हैं, फिर वहां से नीचे गिरते हैं, जब उसका कमाई कुल खत्म होती है फिर अच्छे काम करते हैं तो संसार में स्वर्ग में जाते हैं आते हैं। अरे अर्जुन के कहा ये तो बहुत मुसीबत की बात है, इतना बड़ा प्रयास करे फिर स्वर्ग जाए और जब पुण्य खत्म हो जाए फिर इस मृत्यु लोक में आए, ये तो ठीक नहीं है। तो अच्छा लगता है ऐसे कि मरने के बाद फिर जाए स्वर्ग में, स्वर्ग में जाके वापस आ जाए, ये समझ में आ रही है बात कैसे है। एक आदमी 1,00,000 रुपया लेके यहाँ से बम्बई घूमने जाए, बम्बई घूम के जब 1,00,000 रुपया पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा, होटल वाले को बोला निकलो जाओ भाई वापस, तो वापस घर लौट के आएगा, पैसा खत्म हो गया तो घर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो पुण्य किया ऊपर गए स्वर्ग का भोग किया, पुण्य समाप्त हुआ, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अब विश्व के अंदर इस वक्त अधिक से अधिक अधिक जो जो फेथ है, जो मजहब है, उनका उद्देश्य तो स्वर्ग तक जाने का है, स्वर्ग से आगे तो हेवन, भाई ईसाई ईसाई मजहब तो हेवन तक ही उनका लक्ष्य कि हमको स्वर्ग में जाना है, उससे आगे तो उनका विचार है ही नहीं। और यहां भगवान कहते हैं वहां तक जाके करोगे क्या, वहां से तो वापस यहां आना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग में जाने का नहीं सोचता। अर्जुन ने बोला ये तो जगह मुझे पसंद नहीं है, और कोई रास्ता है क्या? तब भगवान ने ये श्लोक कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम, माम शब्द का अर्थ है मेरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन खड़ा है, ये अर्जुन खड़ा है, यहां कृष्ण खड़े हैं, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं माम मेरा, अनन्य, अनन्य का मतलब है न अन्य, और किसी का नहीं, न अन्य और नहीं, अनन्य और किसी का नहीं, केवल मेरा, अकेला मेरा। और गीता का अंतिम श्लोक क्या है, सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, एकम, एकम माने अकेला, मेरे अकेले शरण लेने से केवल मेरा ही चिंतन करना। और अनन्य का अर्थ है, अनन्य मतलब लगातार धारावाहिक, बीच में कहीं रुकावट नहीं हो, ऐसा जो मेरा चिंतन करता है। चिंतन का मतलब दो शब्द हैं, चिंता और चिंतन एक जैसे हैं। चिंता करना किसी चीज का कब मिलेगी क्या होगा, ये भी सारा दिन चिंता असल में अंदर होती है। चिंता करने से दुख होता है, चिंतन करने से सुख मिलता है, दोनों क्रियाएं एक जैसी है। एक में संसार की चीज को प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं, उसका नाम चिंता है, संसार में कुछ मुझे मिल जाए, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, इसको चिंता कहते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए चिंतन होता है। तो चिंता और चिंतन दोनों काम एक जैसे है, लेकिन एक संसार के लिए है इसलिए दुख देता है, एक भगवान के लिए इसलिए सुख देता है, लेकिन प्रक्रिया एक जैसी है। किसी ने कहा ध्यान करना सिखाओ, ध्यान भगवान का कैसे होता है? हमको आश्चर्य लगा, ध्यान करना कौन सा मुश्किल है, सबको ध्यान करने आता है। बोला हमको कहा हमको तो नहीं आता है ध्यान करने। हमने बोला ध्यान करने का अर्थ क्या है? जो चीज सामने नहीं हो वो चीज दिख जाए उसको ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके आपको जो चीज आपके सामने नहीं है उसकी आपको दिखाई दे दे तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान का और तो कोई अर्थ नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और जो चीज आपके सामने नहीं है वो आपको दिख जाए, इसको ध्यान कहते हैं। तो अब आप यहां बैठे हो आंखें बंद करके, आप ध्यान करके देखें कि आपका और ये आभूषण कहां रखे हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, अपनी तिजोरी में दिखते हैं कि नहीं दिखते, पैसा कहां रखता है दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन, जब माँ स्कूल भेजती है बच्चे को पहले दिन, तो सुबह से शाम चिंतन करती है अब लड़का स्कूल पहुंच गया होगा, अब आता होगा, अब छुट्टी हो गई, उसका चिंतन होता है कि नहीं होता है? जो आदमी आपके सामने नहीं है जिससे आप प्रेम करते हो उसका हर समय ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है ना। तो हमको ध्यान करने आता है, लेकिन उस चीज का आता है जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है। ध्यान करने तो हमको आता है, लेकिन किसका? जिसको हम चाहते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका तो ध्यान सबको आता है। आपको आता है कि नहीं करना है? ध्यान आता है, आंखें बंद करके अपना बेटा दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है ना, दिख देता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे प्रेम जिससे होता है वो ही दिखाई देता है। लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान दिखाई दे देगा। बात सारी प्रेम की है। धर्म क्या है? धर्म प्रेम है। प्रेम धर्म है। और प्रेम क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसलिए हमसे वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। धर्म है ही ये। श्रीमद् भागवत में 6 प्रश्न पूछे हैं ऋषियों ने। पहला प्रश्न है सब लोगों के लिए सब समय बहुत आसानी से करने वाला काम क्या है? यानी धर्म का सार बताइए। बहुत मुश्किल काम है। इतने शास्त्र है, नाना शास्त्र है, किस किस का वर्णन करें? ये बताए इसका रास्ता बताता है, एक ध्यान बताता है, एक योग बताता है, एक यज्ञ बताता है, क्या करें? एक शब्द लिखा है अंजसा। अंजसा, अंजसा का मतलब है अंजन। अंजन समझते सुरमे को आंख में डालें और खटके नहीं, आंख में डालें और खटके नहीं, उसको बोलते अंजसा। तो ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जो आंख में डाले तो भी कष्ट ना हो, इतना आसान हो कि हर एक कर सके। तो उसका उत्तर देते कहते परो धर्म। परो धर्म, परम धर्म क्या है? जो हमारे हृदय में प्रेम है ना। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रेम नहीं हो। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। प्रेम सबके हृदय में सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब उस प्रेम को हम किससे करते हैं ये हमारे हाथ में है। इस संसार में प्रेम तो हम करते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, फिर अपने गांव से करते हैं, महल से करते हैं, गांव से करते हैं, देश से करते हैं, भाई सबसे प्रेम करने का प्रयास करते हैं। तो प्रेम तो है ही कि नहीं कि सब में। प्रेम आत्मा का असली धर्म है। आत्मा का धर्म प्रेम है। ये सनातन आत्मा का धर्म प्रेम है। इसलिए हम प्रेम करते। कोई चीज प्रेम से खाली, कोई कोई प्राणी प्रेम से खाली, पक्षी भी प्रेम से खाली नहीं है। ये छोटी चिड़िया सुबह सुबह बड़ी चिड़िया दाना लाके छोटी चिड़िया को खिलाती है, प्रेम करती है उससे। गाय अपने बछड़े को बैठ कर सुबह चाटती है, प्रेम करती है। प्रेम तो सबके अंदर है लेकिन ये प्रेम हमारा संसार में बटा हुआ है। इस प्रेम को भगवान की ओर मोड़ना ये धर्म है। सनातन धर्म का मतलब प्रेम जो सबके हृदय में भरा हुआ है उसको भगवान की ओर मोड़ना है। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान से प्रेम करें तो संसार का क्या होगा? भाई हम संसार में फिर प्रेम कैसे करेंगे सबसे? तो बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया हुआ है। जल सिंचनम मूलम, पेड़ के मूल में जल का सिंचन करेंगे, जड़ में, पेड़ की जड़ है ना उसमें पानी देंगे तो पेड़ का पूरा जो जो तना है, टालियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल है, सबको पानी बराबर का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जड़ में डालेंगे तो। लेकिन लोटा भर के पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो पत्ता हरा नहीं होगा, फूल के ऊपर डालेंगे तो फूल हरा नहीं होगा। तो पानी कहां डालना है? जड़ में डालना है। जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ ठीक तरह से हरा भरा हो जाएगा। भोजन पेट में डालना पड़ेगा। पेट में भोजन डालेंगे तो हाथ को भी शक्ति मिलेगी, आंख को भी मिलेगी, दिमाग को भी मिलेगी, पांव को भी मिलेगी। कभी स्ट्राइक हाथ ने कर दी, कमा के हम आते हैं, खाता केवल मुखे, हम अकेले खाएंगे तो हाथ के ऊपर गुलाब जामुन रख के बैठा, नहीं नहीं मैं मुंह में नहीं डालूंगा, मैं ही खाऊंगा, खाऊंगा खराब हो, आधे घंटे के बाद हाथ थक जाएगा, गुलाब जामुन नीचे गिर जाएगा। हाथ खा नहीं सकता, कमा सकता है लेकिन खा नहीं सकता है। मुंह में डालेगा, पेट में जाएगा तो हाथ को शक्ति आएगी। तो पेट में अन्न डालेंगे तब सारे शरीर को शक्ति मिलेगी, जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। ऐसे भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो संसार सारा सुखी होगा। ये जड़ में पानी डालने के बराबर। हम पत्तों के ऊपर पानी डालते हैं, फूल के ऊपर पानी डालते हैं, डाली के ऊपर पानी डालते हैं तो कोई हरा भरा नहीं होता है क्योंकि जड़ में पानी डाल नहीं रहे। तो शास्त्र की शिक्षा है। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा ही चिंतन करते रहो, अकेले मेरा चिंतन करो और किसी का मत करो। अर्जुन ने कहा आपका ही चिंतन करें फिर काम कैसे चलेगा संसार का? हम खाएंगे कहां से? कौन हमारी रक्षा करेगा? ये तो 2 प्रश्न है ना। कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन हमको खिलाएगा? भाई आप किसका चिंतन करेंगे? जो आपको खिलाएगा, जो आपकी रक्षा करेगा, उसी का चिंतन करेंगे ना संसार में। इसे मुफ्त में तो किसी का चिंतन नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, और फिर एक शब्द कह दिया ये जनाहा। कितना बड़ा विशाल भगवान ने खुला सबके लिए निमंत्रण दिया, ये जनाहा। जो अपने आप को मानव समझता है उस सबके लिए ये मेरा निमंत्रण है कि मेरा चिंतन करो। मानव मात्र के लिए अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाहा। ये जना मतलब कोई भी व्यक्ति, ये मतलब कोई भी जना, जो जनता में कोई भी व्यक्ति, मानव कोई भी हो, मेरा चिंतन करे। किसी को मना नहीं है कि भगवान का चिंतन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। नवे अध्याय में विशेष रूप से भगवान ने कहा अपिचेतस दुराचारो, तुम दुराचारियों में महादुराचारी हो। दुराचारी, सुदुराचारी, सुदुराचारी का मतलब बहुत महान। पहले नंबर 166 के दुराचारी इकट्ठे करो, उन 100 में से एक निकालो, वैसा भी अगर तुम दुराचारी हो। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाक, लेकिन मेरा अनन्य भाक से, अनन्य मतलब और किसी का नहीं, मेरा भजन करने का निश्चय कर लिया है साधुर एव मंतव्य, उसको साधु मान लो, उसको साधु मान लो। अरे भगवान इतना सारा पापी, इतना सारा दुराचारी, आपका भजन कर रहा है, इसको साधु मान लो, ये कैसे? तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं अरे ठीक है, पापी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भजन करने तो बैठ गया ना। उदाहरण देते हैं, कोई आदमी, बरसात पड़े कहीं, बहुत बड़ा पानी का गड्ढा कीचड़ पड़ी हो, कोई आदमी उसके अंदर गिरे, गिरेगा तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी होगा, गिर गया सामने बोला ये भगवान ये बहुत गंदा है, दूर हो जाए, तो उधर कचरा है। वो जाके बेचारा नल चलता है, नल के नीचे बैठा है, टूंटी खोली है तो ए भाई तुम बहुत गंदा है। हाँ गंदा हूं, लेकिन बैठा तो पानी के नीचे हूं, थोड़ी देर में धुल जाएगा ना, तो ठीक जगह बैठा हूं ना, आके नल के नीचे बैठा हूं ना, तो भगवान का भजन करने बैठा हूं। अनन्यास अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य साधु रे मंतव्य, साधु मन, उसको साधु मान लो। व्यवस्थित ही सह, वो व्यवस्थित है, अब उसने ठीक जगह के आप नल के नीचे आके बैठ गया, सफाई करने शुरू कर दिया, बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, उसका पाप सब धुल जाएगा, उसके आचार बहुत सुधर जाएंगे, आचार सुधर जाएंगे। जब आचार की बात करते हैं, आप सब लोग क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे आचारवान हो, उनका आचरण बहुत अच्छा हो, एक शब्द क्या, करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए। सब लोग ये चाहते हो कि नहीं चाहते? माता लोग क्या चाहती हैं? हाँ आप लोग क्या चाहते हैं? आपके बच्चे कैसे हो? चरित्रवान हो ना, नहीं बोलो हरे कृष्ण। हमारे बच्चे चरित्रवान हो, हमारा नेता चरित्रवान हो, हमारा हमारा जो है जिससे हमारा हमेशा हमारी अपेक्षा है ये होती है कि लोग चरित्रवान हो। लेकिन आधुनिक युग में इस आज जो जमाना चल रहा है ना, इसके अंदर चरित्र इस पृथ्वी के ऊपर से ऐसे उड़ता जा रहा है जैसे कपूर उड़ रही है। Character is evaporating like कपूर, स्प्रिट और पेट्रोल की तरह चरित्र उड़ता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। चरित्र सबको चाहिए, लेकिन चरित्र कैसे मिलता है? चरित्र देखो, हम आपको कहें कि हमको पानी पिलाओ तो आप क्या करेंगे? कोई लोटा लाएंगे, गिलास लाएंगे, तब पानी पिएंगे ना। तो कोई पात्र चाहिए ना जिसमें पानी पिया जाए। तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सदाचार हो, अच्छे लक्षण हो, शुभ उनका चरित्र हो, लेकिन शुभ चरित्र अच्छे लक्षण जिस पात्र के अंदर होते हैं उसकी पात्र कहाँ से लाओगे? असल में आध्यात्मिकता ऐसा पात्र है जिसके अंदर चरित्र को रखा जाता है। आध्यात्मिकता का लोप हो रहा है, इसलिए चरित्र संसार के अंदर से चला जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी पुरानी कहावत सबने सुनी होगी, वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, धन गया तो कोई बात नहीं, हाथ का मैल है दोबारा आ जाएगा। हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, स्वस्थ चला गया तो कुछ तो क्षति जरूर हुई, स्वस्थ ठीक नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन तीसरी लाइन है करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, अगर चरित्र गया तो सब सत्यानाश हो गया। और ये चरित्र विश्व के अंदर से कपूर की तरह उड़ता जा रहा है। हमारी भौतिक प्रगति ने हमारे चरित्र का देवाला निकाल दिया है। आपको चरित्र नहीं मिल रहा है, स्कूल में चरित्र नहीं है, बच्चों का आज से 50 साल पहले स्कूल के अंदर बच्चे चढ़ते, आप लोग पढ़े थे जब, तब आपके गुरुजनों के लिए आपके मन में क्या भाव हुआ करता था, अपने टीचर के लिए कितना सम्मान हुआ करता था। गली में मास्टर साहब को देखते थे तो बड़े आदर से किसी कोने में खड़े हो जाते थे। अब तो मास्टर को देखते हैं तो मास्टर कोने में खड़ा हो जाता है लड़के को देखकर कि ये मुसीबत यहां से जाए तो जान छूटे। कितना उल्टी विपरीत बुद्धि आ गई है, चरित्र कहां उड़ गया है। कितना सम्मान हुआ करता था बड़ा बुजुर्ग। एक नगर पूरे के अंदर एक मास्टर होता था तो वो सारे नगर के लिए बहुत सम्मान्य होता था। भाई गुरुजी हमारे बच्चों को शिक्षा देता है, हमारे बच्चों में आचरण डालता है। अब तो आचरण का ऐसा आचार डाला है कि उसका तो बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या है विश्व। और फिर भी किसी से बात करेंगे बोलेंगे हम बहुत बड़ी प्रगति की है, हम इतनी बड़ी प्रगति की है, साइंस ने इतनी बड़ा, हमारा विज्ञान इतना प्रगतिशील हो गया है। हम कभी पूछते हैं तुम्हारी प्रगति भैया मेरे को गिन के बता दो। कन्हैयालाल जी आज से 50 साल पहले आपके घरों में जो भोजन करते थे कौन से बर्तन हुआ करते थे? कांसी तांबा तो कम से कम होता ही था, लेकिन कोई अतिथि आता था तो चांदी के बर्तन होते थे, एक सेठ चांदी का होता था कि कोई साधु महात्मा आ गया, ब्राह्मण आ गया तो चांदी के बर्तन में भोजन खिलाते थे। चांदी के बर्तन हमारे घरों में वो लोटा थाली हुआ करते थे, पुराने जमाने के लोगों से पूछ लो। और नहीं तो चांदी थोड़ी कम हो गई तो फिर भी तांबा था, पीतल था, कांसी था, वो चला गया। फिर आया लोहा, स्टील लोहा आया, वो भी गया। चीनी मिट्टी आई, वो भी गया। फिर कागज का गत्थे की प्लेट आई। अब पत्ते के ऊपर खाते हैं, कागज के पत्ते के ऊपर खाते हैं, चांदी के ऊपर खाने वाले खानदान के लोग पत्ते के ऊपर खाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़ी प्रगति की है। प्रगति कही है कि नीचे आए हो? पूछ लो उनसे कि तुम्हारी प्रगति पहले थी कि अभी है, किस में कैसे भोजन किया, जो पात्र आपके पास था कितना पहले स्वच्छ था, उसको हटा के आपने कितने चीनी के कोप के ऊपर आ गए हैं, चांदी की गिलास गुम हो गई, तो तुम्हारी प्रगति नहीं हुई। आप आगे नहीं बढ़े, आप बहुत पीछे हो गए हैं। आपका इस देश के अंदर पहले आइडियल किसको मानते थे? आइडियल का मतलब हमारे लिए सम्मान्य व्यक्ति कोई है जिसके लिए हमारे दिल में बहुत आदर होता था। इस देश में कोई जमाना था साधु संतों का बहुत आदर हुआ करता था। आचार्य शंकराचार्य जी महाराज एक पूरे देश के अंदर बड़े महात्मा थे, सब उसका प्रणाम करते थे। मध्वाचार्य आए थे, मध्वाचार्य जी महाराज पूरा दक्षिण भारत, रामानुजाचार्य उसको अनुयायी थे, उनको हृदय में रखते थे। एक जमाना था साधु संतों के लिए सम्मान तक गया, साधु मधु संतों का सम्मान गया, फिर वीर पुरुषों के लिए लोगों के दिल में धारणाएं आई। साधु पुरुषों की धारणा थोड़ी कम हुई तो वीर पुरुषों के, शिवाजी हमारा, महाराणा प्रताप सिंह हमारा, तो उसके लिए आदर भाव से घर में चित्र लगाते थे। भगवान पहले तो भगवान के चित्र, भगवान की भावना थी, संत महात्माओं की भावना थी। वहां से उतर के आई तो किसकी भावना आई? वीर पुरुषों की आई, जिन्होंने देश के लिए, अपनी रक्षा के लिए, धर्म के लिए कुर्बानियां दी। अब वो भावना भी थोड़ी कम होने लगी। अब किसकी भावना आई है? अभिनेता और अभिनेत्राओं की। फोटो घर में किसके लगे हों? भगवान का एक आधा फोटो होगा, दादे का एक होगा, ए फिल्म वाले एक्टरों के 15-20 होंगे, कोने कोने में लगे हुए। तो तुम्हारी चेतना कहाँ संत महात्माओं से गिरती हुई, महापुरुषों से गिरती हुई, और उसके बाद बहुत बड़े देश के रक्षकों से और वीर पुरुषों से गिरती हुई, अभिनेता और अभिनेत्रा और क्रिकेट के खिलाड़ी हाथ में जो उठा के एक डंडा खड़े है, वो तुम्हारा आजकल का आइडल बना हुआ है। वो कितना नीचे पतन हुआ है। नेताओं के लिए एक जमाने में नेताओं के लिए थोड़ा सम्मान था, अब तो सबसे नीचे स्तर का जो व्यक्ति है उसके लिए सम्मान है कि ये सच है कि झूठ है? घर में जाके देख लेना कि फोटो सबसे ज्यादा किसके लगे हुए हैं, कि भगवान रामकृष्ण के फोटो ज्यादा हैं कि अभिनेता अभिनेत्राओं के और खिलाड़ियों के फोटो ज्यादा है? घर में जाके ढूंढ लो लड़कों के पास, इससे पता लग जाएगा कि कितने हम आगे बढ़े, ऊपर गए हैं कि नीचे आए। तो चिंतन हमने किसका है? भगवान का चिंतन छोड़ दिया है हमने, चिंतन का हमारा स्तर बहुत नीचे गिर गया। और इस चिंतन नीचे गिरने के कारण चरित्रता में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो मान सम्मान, ये तो फिर भी भारत में अभी चरित्र मिलता है, लेकिन पाश्चात्य देशों में चरित्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। चरित्र कहते क्या है इसको मालूम नहीं है उनको। क्या सम्मान होना चाहिए बड़े का, बुजुर्ग का, पिता का, दादे का, माँ का? ये तो ये समाप्त हो चुका है संसार में। ये तो थोड़ा बहुत यहाँ गांव गांव में मिलता है, और कहीं है नहीं। एक दूसरे को खाने ला रहे हैं लोग, आदमी आदमी को खाएगा। ये कलयुग इतना भारी समय आ रहा है। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर्युपास्ते। कोई भी व्यक्ति, भगवान ने कह दिया कोई भी व्यक्ति, हम बात कर रहे थे अपिचेत से दुराचारो, दुराचारी में महा दुराचारी हो लेकिन मेरा भजन करने लग जाए, अनन्य भाक मेरा हो जाए तो उसको साधु मान लो। अर्जुन ने पूछा कितना टाइम लगेगा साधु बनने में, पाप तो बहुत समय से कर रहे। तो भगवान ने उत्तर दिया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रम। ऐसे भगवान ने चुटकी बजाई क्षिप्रम, एक मिनट में हो जाएगा, देर थोड़ी लगेगी। आप एक महीना छुट्टी थी, अभी स्कूल में छुट्टी थी ना एक महीना, ये कमरे बंद पड़े हैं, अंधेरा एक महीने से कमरों में पड़ा है, लेकिन दरवाजा खोल के बटन को दबाओगे तो अंधेरा कहेगा मैं एक महीने से बैठा हूं मुझे जाने में थोड़ी देर लगेगी, ऐसे कहेगा कि नहीं? भला लाइट जली अंधेरा भाग जाएगा, देर लगेगी क्या? बटन दबाते ही अंधेरा चला जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में। अरे मेरे पास आया नहीं उसका सारा चिट्ठी साफ हो गई, उसको ठीक होने में एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन कोई आए तो सही ना। चतुर्विधा भजते माम जनहा सुकृति नो अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन करते हैं? आर्तो, आर्तो किसको कहते हैं? जो दुखी है बेचारा। अरे कम से कम दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, रोग में, अरे मेरे पास आके रोता है ना तो मेरे को याद करता है, मेरे पास गिड़गिड़ाता है तो उसका भी मैं उद्धार करता हूं। आता तो मेरे पास है ना। आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासु है मुझे कहां जाना है, कहां पहुंचना है, भगवान मुझे रास्ता बताओ, मैं भटक गया हूं, आया तो मेरे पास ना। अर्थार्थी धन चाहिए भगवान, पैसा चाहिए, काम नहीं चल रहा है भगवान हमारा, कुछ बरकत पाल लो, अरे आया तो मेरे पास ना। देने वाला तो सबको भगवान है ना, दे कौन रहा है किसको, सबको कौन दे रहा है? भाई लक्ष्मी किसकी पत्नी है? भाई लक्ष्मी सबको चाहिए ना, लक्ष्मी कहां से आएगी? लक्ष्मी तो विष्णु के पास है, और संसार इतना मूर्ख है लक्ष्मी को अपना मान के बैठा हुआ है, और लक्ष्मी बहुत बड़ी हंसती है कि ये मूर्ख तुम्हारी हम कैसे हो जाएगी, तो विष्णु पत्नी है तुम्हारे घर में कैसे बैठेगी? ये तो रावण की वृत्ति थी, राम को छोड़ के सीता को उठा के गया था, राम नहीं चाहिए सीता चाहिए, पैसा चाहिए भगवान नहीं चाहिए, ये तो रावण है। ये संसार सारा की रावण की वृत्ति हो गई है, भगवान की प्रतिभाव नहीं है लेकिन पैसा सब चुरा के अंदर रखते हैं। तो लक्ष्मी को कोई कहे कि मैं अशोक वाटिका में बंद करके रखूंगा और राम को अंदर नहीं आने दूंगा, तो ये तो रावण वाली वृत्ति है। और संसार सारे का भाव ऐसा होता जा रहा है कि हमको भगवान नहीं चाहिए पैसा चाहिए। तो लक्ष्मी हंसती है कि तुम्हारे जैसे कई राजा महाराजा पहले आए चले गए, इस लक्ष्मी किसी की आज तक हुई नहीं। और ये पृथ्वी, इसको भी विष्णु पत्नी कहते हैं, ये पृथ्वी, अरे ये मेरी जगह है, ये मेरी जायदाद, ये मेरा खेत, ये नहीं नहीं इसको हाथ मतलब तेरे जैसे पहले कई आए, इससे पहले चले गए, मर गए, खप गए, कई राजा थे, कई वो सब चले गए, ये तो धरती बैठी है, किसी की हो नहीं आज तक, किसी की हुई नहीं, किसी की हुई है क्या आज तक? न पृथ्वी किसी की होगी, ना लक्ष्मी, तो भगवान की है। जिसको ये समझ में आ जाए कि ये माता है, पृथ्वी माता है, हमारे तो माता पृथ्वी को मानते हैं, तो माँ उसको माता कहोगे तो उसकी गोद में खेलने का आपको अधिकार है, लेकिन मेरी है उसका मालिक पति बनोगे तो धक्का देगी, भगा देगी आपको, आपकी नहीं हो सकती। ठीक इस तरीके से लक्ष्मी भगवान की है, भगवान के संग में बिठा के पूजा करो तो लक्ष्मी रहेगी, तो शुद्ध लक्ष्मी, नहीं तो चंचल लक्ष्मी, एक दिन भी नहीं रहेगी। दौलत कहते दौलत, दो लात, एक आती है तब मारती है अहंकार में, ऐसे मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं, मेरे पास पैसा है तो किसी को पूछता नहीं, और जब जाती है तब दूसरी लात ऐसे पीठ पे मारती है, नीचे गिरता है, उठने जैसा भी नहीं रहता है। तो ये जो पैसा है ये भगवान लक्ष्मी है, इसका नाम लक्ष्मी, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं पैसे को, मालूम है? तो ये भगवान की है, माता बन के इसको भोगोगे तो आपको गोद में बिठा के बहुत बड़े प्रेम से आपका पालन पोषण करेगी, लेकिन इसका मालिक बनोगे तो बहुत हंसती हुई चली जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी। तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। अनन ये जनाहा, कोई भी व्यक्ति, ये बहुत बड़ी उदारता भगवान की। देखो ऐसे नहीं कहा है कि केवल ब्राह्मण ही मेरा चिंतन करेगा, नहीं कहा, केवल सन्यासी मेरा चिंतन करेगा, ऐसा भी नहीं कहा, कोई किसी विशेष व्यक्ति मेरा चिंतन करेगा, ऐसा नहीं कहा। ये जनहा कोई भी हो, कहीं से भी आए, अपिचेत सु दुराचार, दुराचारी में दुराचारी हो, पाप योनि है। पाप योनि का मतलब किसी कारण से पुराने पाप थे, किसी नीच कुल में जन्म हुआ है, कोई बात नहीं। कि होन है, पुलक है, कुश है, यवन है, कोई भी है, अगर भगवान के भक्तों में संग आए तो वो भी तर जाता है। तो कितना नीच है तब भी उसका उद्धार हो सकता है, इतना बड़ा भगवान है। ये जना परिउपासते, शब्द है उपासते, उपासते, उप मतलब ऊपर उठना, आसते मतलब पास में आके बैठना, परिउपासते उपासना करना है। उपासना शब्द जो है ना, उपासना मतलब अपना आसन ऊपर करके भगवान के निकट बैठना। जैसे कोई पूजा करते हैं ना आप मंदिर में, तो आप कहाँ बैठेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे तब पूजा होगी ना, तो वो अपना आसन भगवान के सामने लगाना, इसका अर्थ है उपासना। उपासन सामने किसी के बैठना, भाई आपको भगवान को आरती करनी है तो निकट करें, ऐसे नहीं है भगवान मंदिर में आप यहाँ आरती घुमाएंगे, ऐसे तो नहीं है, उधर सामने खड़े होंगे ना। उपासते ऊपर उठ के भगवान के सामने आसन लगाए, परिउपासते उपासना तो करो लेकिन मुझे प्राप्त करने की करो, संसार मुझसे मांगने की मत करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जन हम परिउपासते, उपासना करता है, मेरे पास आके बैठता है लेकिन मुझे ही चाहता है। चाहता क्या है, मुझे चाहता है, मुझसे नहीं चाहता है, दोनों में अंतर है। कल इस बात की चर्चा की थी लेकिन ये बात उसमें नहीं बताई थी, कृष्ण भगवान के पास अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए गया था और दुर्योधन भी गया था। भगवान ने पहले अर्जुन को देखा और पूछा दोनों से काय के लिए आए हो, बोला युद्ध होने वाला है, आपसे सहायता चाहिए। भगवान ने कहा सहायता चाहिए, अच्छा युद्ध के लिए, अब देखिए मेरा निर्णय ये है, एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना है। चतुरंगिनी सेना कहते थे चार प्रकार की सेना, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, ये चार प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहते थे। तो रथी आपको, रथी भी मेरे पास है, हाथी वाले हैं, घोड़े वाले, पैदल, पूरी मेरी सेना है, और ये सेनापति के साथ एक तरफ है, एक तरफ मैं अकेला हूँ, और मैं ये भी वायदा करता हूँ कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप चयन कीजिए, चुनाव आपको करना है, लेकिन एक बात बता दूं, अर्जुन छोटा है, पहले अधिकार छोटे को देता हूँ चुनने का। दुर्योधन ने बोला चुनने का अधिकार मैं आया पहले मैं हूँ, और अधिकार पहले आप अर्जुन को देते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ये मर्यादा है, चुनने का अधिकार पहले छोटे को देना चाहिए, छोटे को जो चाहिए वो चुन ले। अब दुर्योधन बहुत पसीना निकल रहा है, अब युद्ध हो रहा है तो सेना लेके जाएगा अर्जुन, तो फिर मैं इस ग्वाले को ले जाके क्या करूंगा, और लड़ेगा भी नहीं तो इसको मैं क्या करूंगा। अर्जुन ने सोचा भी नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं कोई आदमी सोचे कि मैं क्या लूं, नहीं, अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए कृष्ण, मुझे आप चाहिए, आपकी आवश्यकता है। अरे दुर्योधन वो बहुत अच्छा किया, मूर्ख है, इसको कुछ बुद्धि नहीं है, युद्ध के लिए एक आदमी लेता है जो किसी काम का नहीं है, लड़ाई नहीं करेगा। और दुर्योधन उठ के चला गया, हाँ सेना भेज दीजिएगा, ठीक है, द्वारकाधीश जी सेना आपकी भेज दीजिए, हम चले। लेकिन अर्जुन ने कहा भगवान हमें आपकी आवश्यकता है। तो अर्जुन ने किसको मांगा, भगवान को मांग लिया, ये परिउपासते हैं। उपासना की अर्जुन ने, भगवान के निकट जाके बैठा, लेकिन मांगा किसको, भगवान को मांगा। तो परिणाम क्या निकला, नतीजा नया क्या निकला, रिजल्ट क्या आया महाभारत का, चतुरंगिनी सेना तो भगवान ने भेजी थी वो भी स्वाहा हो गई, लेकिन कृष्ण अर्जुन के साथ रहा तो विजयी होके बाहर आ गया। तो जो भगवान को मांग लेता है वो तो सदा के लिए आनंद में हो जाता है, भगवान से मांग ले जाएगा, जब खत्म हो जाएगा फिर जाएगा दोबारा भगवान कुछ और दे दीजिए, तो वो तो मांगता ही रहेगा। प्रभु को, प्रभुता को भजे सब, प्रभु को भजे न कोई, प्रभुता के पीछे सब पड़े हो, मुझे भगवान से मिल जाए मुझे। अरे भगवान को भजन करने वाला, परिउपासते का मतलब भगवान की उपासना करता है कि भगवान आप मुझे मिल जाओ। एक महाराज था, बहुत बड़ा राजा था, राजा ने घोषणा कर दी आज मेरा जन्मदिन है, जिसको जिस चीज के ऊपर हाथ लगो वो ले जाओ, हाथ रखते जाओ ले जाओ, हाथ रखते जाओ ले जाओ। तो पूरा नगर आ गया, पूरा नगर आया, किसी को गाय चाहिए तो है महाराज गाय है, ले जा भाई, भैंस चाहिए भैंस, सोना चाहिए ले जा, जिस चीज के ऊपर हाथ लगे वो ले जा, हाथी तो हाथी ले जा। एक बेचारी बूढ़ी माता जी थी, आई बोला क्या हो रहा है यहाँ, बोला महाराज का जन्मदिन है, घोषणा कर दिए जिस चीज के ऊपर हाथ रखो वो ले जाओ, आपका हो गया। माता जी ने बोला मुझे राजा से मिलना है। तो राजा से मिलना इतना मुश्किल नहीं था, हाँ कोई बात नहीं आपको राजा से मिलाते हैं। पुराने जमाने में राजा अपनी प्रजा से मिलता था, और प्रजा राजा के लिए बहुत बड़ा आदर करती थी। राजा ऐसे जो थे जो अपनी प्रजा को संतान की तरह, अपने बच्चों की तरह समझते थे। जब बाहर निकलते थे राजा तो लोग फूल बरसाया करते थे। रास्तों में खड़े होके स्त्रियां ऊपर छत के ऊपर खड़ी होती थी और लोग दोनों साइड में खड़े होकर फूल बरसाया करते थे। हम सुनते हैं कि महाराज युधिष्ठिर निकलते थे तो लोग फूल बरसाया करते थे। अब कल आजकल के राजाओं का क्या हाल है? लोगों के हृदय के ऊपर राज करते नहीं है, बाहर निकलते हैं वो बुलेट प्रूफ कार में निकलते हैं कहीं से गोली ना आ जाए। फूलों की तो किसी को आज कोई मिलेगा ये तो कोई भय, कोई उनको आशा भी नहीं है कोई फूल बरसाएगा, कोई गोली ना मार दे कहीं से। भय बाहर निकलते हुए उनको भय लगता है, बाहर निकलते नहीं है और निकलेंगे तो बहुत भय लगता है कि कोई गोली ना मार दे मुझे। और पुराने तो महाराज राम भगवान स्वयं साक्षात राजा हुआ तो साधारण वेश करके जनता के अंदर घूमता के देखूं लोगों का दुख क्या है कि उसके दुख का निवारण करूं, और अभी ऑफिस में बैठ के दूसरों को दुख कैसे दूं इसकी योजना करते हैं। तो कितना दोनों तो कहां से फूल लोग बरसाएंगे। हरे कृष्णा। तो पर्युपास्ते का अर्थ ये है, वो माता जी कहा कि मुझे राजा से मिलना है। बोला मां जी चलो राजा के पास। राजा बैठे हुए थे। माता ने बोला महाराज क्या आज हो रहा है आपके नगर में, आपके जन्मदिन की बधाई हो। बोला माँ बहुत अच्छा है, आज हमने कहा हमारे राज में जिस चीज के ऊपर जो हाथ रखेगा उसकी होगी। बोला महाराज ये सच्ची बात है। बोला देखो सब ले जा रहे हैं। बोला महाराज सत्य। बोला पक्का सत्य है। माता जी ने लंबा हाथ रखकर राजा के सर के ऊपर रख दिया। बोला महाराज मुझे आपकी जरूरत। अब राजा को ले लिया तो राजमाता हो गए, ऐसे बैठ गई। अब किसी चीज को क्यों मांगे, राजमाता है पूरे राज में बैठी खाती। तो बुद्धिमानी ये है कि राजा को मांग लो ना, राजा से मांग के ले जाओगे। गाय ले गया रास्ते में मर गई तो फिर क्या करोगे, दूसरी गाय चाहिए ना। तो भगवान को ही मांग लो ना। पर्युपास्ते का मतलब ये है जो भगवान को मांग लेता है। पूजा तो करता है, कुछ भगवान से मांगने के लिए नहीं करता है, भगवान को ही अपनाने के लिए करता है। एक संत किसी गृहस्थी के घर में गया, सदगृहस्थी था, संत को अपने घर में ले गया। घर क्या बहुत बड़ी कोठी थी, बड़ा एक हवेली बनी हुई थी। महाराज अंदर गए, बड़ी हवेली देखा, बोला बहुत सुंदर बड़ा महल बनाया है। वो सदगृहस्थी बोला है हम तो कुछ अपने साथ लाए नहीं थे महाराज, तो भगवान की कृपा आप संतों की कृपा है, ये आपका है महाराज, हमारा नहीं। बड़े निम्र और सादर भाव से बोला तो ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की हमारा थोड़ी। अंदर क्या बहुत सुंदर फर्नीचर सारा बहुत अच्छा रखा हुआ था, सब सजा हुआ घर था। ये तो बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं, हाँ ये तो शीशम की लकड़ी का फर्नीचर सारा बना है, ये तो कांच का सारा है। बोला हाँ महाराज सब भगवान का देन है, हमारे घर से तो कुछ हम तो कुछ साथ लाए नहीं थे, खाली हाथ आए थे। भगवान ने दिया है। बेटे थे, बच्चे बहुत बड़े सदाचारी, प्रणाम किया महाराज को। बोला ये बालक। बोला ये तो आपके हैं महाराज, भगवान ने दिए, हम तो सेवक हैं इनकी देखभाल कर रहे हैं। तब घर के अंदर एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ था और मंदिर के ऊपर भगवान गोपाल जी बैठे हुए थे। महाराज ने पूछा सेठ जी ये, तब सेठ बोलता है ये मेरा है, ये भगवान मेरा है, घर तो भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, ये फर्नीचर भगवान का है, लेकिन ये बैठा है ये मेरा है, ये मेरा है। ये सदगृहस्थी का भाव अगर हो कि भगवान मेरा है, बाकी सब कुछ है भगवान का है, दे दिया है तो संभाल रहा हूं, ले जाए तो ले जाए, हम तो चौकीदार बन के उसकी चीज को संभाल के बैठे हुए हैं। देने वाले के लिए अगर देने पे भगवान आ जाए ना, देंदा देवे लेंदा थक पे, देना चाहे तो उसके पास हजार हाथ है, जितना देगा तुम संभाल नहीं सकोगे, संभाल नहीं सकोगे। लेकिन लेने के ऊपर आएगा तो भी आप दो हाथों से कितना पकड़ेगा, हो तो सब कुछ एक मिनट में ले सकता है। तो जब वो देता है खुश होते हो, जब लेता हो तब भी खुश हो जाओ। ठीक है अपना है ले लो, हमें क्या आपत्ति, आपका था, बिठाया था हमको, चौकीदारी कर रहे थे, अब ले गए तो हमारी जान छुट गई, हम फ्री हो गए। ऐसी वृत्ति अगर हो तो बड़ा सुखी रहेगा। नहीं नहीं मैं लुट गया, तुम लाया क्या था जो लुट गया। एक आदमी था, पुराने जमाने की बात है, 500 रुपया किसी को उधार दिया, मित्र था, ले गया, 6 महीने वापस नहीं दिए, साल नहीं दिए, उसने पूछा तक नहीं। एक दिन उसके घर में मृत्यु हो गई तो घर में सब रोने लगे, रो रहे थे तो ये पैसे मांगने गया, बोला मेरे 500 रुपया वापस दो। तो लोगों ने कहा पैसे मांगने आया, अभी इस वक्त इसके घर में मृत्यु हुई है, इतना बड़ा दुख हो रहा है, कब दिए थे, बोला इसको 2 साल हो गए। बोला 2 साल में आज क्यों मांगने आया। उसने बोला अभी तक मुझे विश्वास था कि मेरे पैसे वापस देगा, अब भगवान ने जो चीज इसको दी थी उसने अपनी चीज वापस ली, इतना रो रहा है, मेरे पैसे कहां से देगा ये? अभी तक तो मुझे विश्वास था कि कल न परसों दे देगा, तो मैं इंसान हूं, मेरा पैसा, लेकिन भगवान ने ये कुछ दिया था, अपनी चीज वापस ले ली, इतना चिल्ला के रो रहा है तो मेरी चीज नहीं देगा, मुझे इसके ऊपर विश्वास ही नहीं है अभी। तो दुनिया में जो कुछ है, आपके साथ कुछ आया नहीं था, खाली हाथ आए थे, इस बात कपड़ा भी इतना टुकड़ा साथ नहीं लाए थे, ये बात सबको याद होनी चाहिए। हम खाली हाथ संसार, केवल अपना कर्मों के कटे हुए संचित रूप से अपना भोग लाए थे, वो तो इसकी इधर मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, कोई आदमी दुख चाहता है, कभी किसी को देखा है मंदिर के अंदर जाके प्रार्थना करे, हे भगवान कृपा करके मेरे को टीबी की बीमारी दे दो, किसी ने मांगा है? महाराज कृपा करना कैंसर तो हो ही जानी चाहिए मेरे पिताजी को, किसी ने मांगा है? नहीं मांगा है ना, लेकिन मर रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दुख दे रहे, कोई दुख नहीं मांगता है ना, लेकिन दुख सबके घरवाजे के ऊपर आता है कि नहीं आता है? कोई ऐसा आदमी है जो दुख से बचा हुआ है? तो प्रहलाद महाराज कहता है दुख कोई नहीं मांगता है, लेकिन सबके दरवाजे के ऊपर दुख आके खटखटाता है, मैं आ गया हूं तुमको भोगना पड़ेगा, इसलिए प्रयासो न कर, प्रयास करो मत, सुख भी जो तुम्हारे भाग का है, धन तुम्हारे भाग का है, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आगे खटकाएगा कि भोग कर लो, जैसे दुख आता है कोई नहीं मांगता है आ ही जाता है ना, ऐसे सुख भी तुम्हारे कर्म का तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आएगा, तुमको मिलेगा, तुम समझता है मैंने प्रयास करके कमाया, तो तुम अपना टाइम खराब कर रहे। और देख लो कई लोगों के पास अपने आप कहीं से मिलता है, जगह जायदाद कहीं से ली थी, वो गरीब तो छोड़ के गया था, वो खुदाई कर दो अंदर के अंदर सोना पड़ा था, उसका नहीं था, पता नहीं किसका था, लेकिन मिल गया। तो जिसको मिलना है उसको मिल जाएगा, कोई उसका रोकने वाला नहीं है। अपने साथ भाग्य लाए हैं, एक वस्त्र भी साथ लाए, और जाएंगे तब एक चीज भी शरीर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, घर वाले नहीं छोड़ेंगे, एक कान में ना थोड़ा सा ये सोने का टुकड़ा होगा वो भी निकाल लेंगे, ये नाक में भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पक्का पता है सबको ना, जाने वालों को देखा है ना, कुछ नहीं छोड़ते, ना कुछ लाए थे कुछ न ले जाएंगे, ये सब समझते हैं, लेकिन फिर भी कहते नहीं हमारा कहां रखोगे। तो मांगना किसको चाहिए? परियोपास्य का अर्थ है भगवान को ही मांग लो, उपासना करो कि भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, आपसे हमारा प्रेम हो, आपसे हमारा स्नेह हो, क्योंकि बाकी संसार के हमने प्रेम करके देख लिए, सब मतलब के है, पैसा नहीं है तो दोस्त सारे भाग जाएंगे, पैसा है तब तक दोस्त चारों हो रहे, पैसा जेब में नहीं है तो दोस्त दूसरे के रास्ते से जाएगा, आएगा भी नहीं, बात करने को भी तैयार नहीं होगा, और शरीर ठीक नहीं है, खांसी हो गई, उठ नहीं सकते, तो बेटा भी बोलता है काका कब मरे जान छूटे, ये बेटो कंघे पे सजोरी कर जंद जंद से मिचो खाली कर से तो कोई आप किसी को किसी को काम सबको काम चाहिए, कुछ लाओगे दाम चाहिए, बाकी किसी को कोई पसंद नहीं करता है, तो भगवान है जो सबको चला रहा है, बाकी इंसान तो मतलब का है, कोई निस्वार्थ किसी की सेवा करे ये संभव नहीं। तो परियोपास्य का अर्थ ये, और ये सबके लिए भगवान ने खुला निमंत्रण दिया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनहा परियोपास्यते। फिर भगवान अपने भाव बताते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये पहली लाइन है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, ये जनहा परियोपास्यते, कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त करने की उपासना करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, तेषाम वो जो ऐसे लोग हैं जो मेरे को प्राप्त करने के लिए अभियुक्तानाम, युक्त कहते हैं जुड़ा हुआ, अभियुक्तानाम मतलब वो तो मुझे ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, मुझे छोड़ता नहीं है कभी भी, मेरे अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए, अभियुक्त मतलब युक्त का मतलब वैसे होता है जुड़ा रहना, जिसमें से एक शब्द निकला है युगल, जुगल जोड़ी कहते हैं, जुगल का मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो वो भगवान कहते हैं जो मुझसे ही अभियुक्त है, ठीक तरह से मुझसे जुड़ गया है, मेरे अलावा और किसी को उसको कोई चीज पसंद नहीं है। तब भगवान ने आखिरी लाइन लिख दी, योग क्षेमम वहामि अहम्, ऐसा जो भक्त होगा मुझे चाहेगा, मेरा चिंतन करेगा, मुझसे जुड़ा रहेगा, मेरे अलावा और कहीं जिसको सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पास जो नहीं है वो मैं पूरा करूंगा, और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और शब्द क्या लिख दिया, वहामि अहम,
वाहन में से एक शब्द हिंदी में है, ये गाड़ियां जो लोड उठाती हैं उसको वाहन कहते हैं, वाहन कहते हैं मालूम है, वाहन वाहन कहते हैं ना, वाहन को मतलब ढोना। भगवान ने कहा उसका मैं मजदूरी करूंगा, मजदूर होता है ना, ढोता है ना सर के ऊपर, मैं ढोके लाऊंगा उसके लिए, उसके पास जो चीज कमी है उसको मैं ढोके लाऊंगा। एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है जिसने टीका लिखी है महाभारत के ऊपर, अर्जुन मिश्र, अर्जुन मिश्र नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसने महाभारत में टीका लिखी है, अलंकार टीका उसका नाम है। उस टीका के अंदर जब गीता के इस श्लोक के ऊपर आया तो बहुत बड़ा विद्वान था, वहां में अहम क्या भगवान मजदूर है क्या, अपने भक्त के लिए कंधे के ऊपर उठा के क्या भार लाएगा ढोकर क्या, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला भगवान ऐसे थोड़ी कुछ भार उठा के लेने वाला मजदूर है। तो उसने उस पेन उठाई, लकीर लगाई कि वहां में ठीक शब्द नहीं है, गलती हो गई है शायद, ददामी होना चाहिए, ददामी का अर्थ है देता है, किसी के हाथ से दे देगा भगवान भाई ठीक है। लेकिन वो बड़ा ब्राह्मण था, ब्राह्मण भिक्षावृत्ति रखता है, घर में कुछ जो कठा करके नहीं रखता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो कठा करके रखता है वो वैश्य है, संग्रह करना ब्राह्मण का काम नहीं है, वो भगवान के भरोसे जिएगा कि आज दिया है तो कल भी देगा। तो ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए गया नदी के ऊपर स्नान करने के लिए, भिक्षा मिली नहीं, घर में तो दाल चावल कुछ था नहीं। अब ब्राह्मण नहा धोने के लिए गया, पीछे ब्राह्मणी घर में बैठी है, दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी बहुत गरीब, ब्राह्मण ब्राह्मण का भूषण है गरीब, ब्राह्मण गरीब बहुत अच्छा लगेगा, उसका भूषण यही है, हा? क्या कहते हैं संतोषी ब्राह्मण, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आया तो आज बहुत भोग बनाएंगे, खीर पूरी खाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और खिलाएंगे, नहीं आया तो उपवास कर लेंगे, ये हो गया ब्राह्मण। एक व्यक्ति था अनाज लेके सामान लेके आया, महाराज महाराज कुछ दान करना है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने पास शाम के लिए भोजन का सामग्री है, और घर से ब्राह्मण ने कहा महाराज आज शाम के लिए तो है। उसने बोला ये किसी और को दान दे दो, हमारे पास शाम तक का सामान पड़ा है। दूसरे ब्राह्मण के घर गया, बोला महाराज ये दान देना है, सामान लाया हूँ। अपने बोला ब्राह्मणी अपने पास अभी खाने का है, बोला अभी तो महाराज भोजन पक गया, बोला अभी हमारे पास है, ले जाओ किसी और को दे दो, बोला महाराज शाम का, बोला जो अभी दिया है वो शाम को भी देगा। ऐसा ब्राह्मण जिसकी वृत्ति होती है वो बेफिक्र होता है, भगवान के भरोसे जीता है। ये ब्राह्मण उधर बैठा था, दरवाजा खटखटा, एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर सा लाठी होती थी, एक लाठी लटका ये कंधे के ऊपर, दोनों तरफ से दो टोकरियां भरी हुई है, भार उठा के आया है, एक टोकरी के अंदर दाल चावल है और एक टोकरी के अंदर दूध घी है, और कहता है मैया मैया ब्राह्मण बाबा ने ये भेजा है, महाराज जी ने ये भेजा है, ये भोजन की सामग्री लो, और नीचे सामग्री रखता है, ऐसे नीचे रखता है ये लकड़ी कंधे की, वो माता जी देखता है पीठ के ऊपर लाल निशान ऐसे पड़ा है जैसे किसी ने उसको मारा हो। बेटा इतना सुंदर बच्चा था, बोला बेटा तुम्हारे को ये मारा किसने, इतना बड़ा लाल निशान तुम्हारे पीठ पे पड़ा। बोलता महाराज पंडित जी ने मारा है, महाराज महाराज ने मारा है, पंडित जी ने मारा। ब्राह्मणी कहे पंडित जी तो बहुत निर्मल स्वभाव के, किसी को मारते नहीं, आपको कैसे मारा। बोला मेरे को पंडित जी ने। बोला बैठो बेटा बैठो, मैं भोजन पकाती हूँ, आप खाना, पंडित जी आता है तो पूछते हैं क्यों मारा है। माता जी अंदर भोजन बनाने गई, ये बच्चा तो चला गया वहां से, पंडित जी आया, दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी ने सम्मान किया, आया तो भोजन परोसा, पूरी बनी हुई है, दाल बनी है, खीर बनी है, सब्जियां बनी है। महाराज चिंतित हो गए, बोला आज तो घर में कुछ था नहीं, भिक्षा तो मुझे मिली नहीं, ये भोजन कहां से बनाया। ब्राह्मण ने कहा महाराज भोजन कहां से बनाया इस बात को छोड़ो, आपने उस लड़के को मारा क्यों। बोला मैंने उसको मारा, कौन से लड़के को मारा। बोला एक लड़का अभी थोड़ी देर पहले ये कंधे के ऊपर लाठी में लटका के दोनों तरफ से टोकरियां दाल चावल और घी दूध सब लाया, चीनी शक्कर लाया, बोला ब्राह्मण ने भेजा है, बड़ा लाल निशान पीठ पे पड़ा था और कह रहा था ब्राह्मण ने मारा है। बुद्धिमान ब्राह्मण था, ऐसे सर को पटक के बोला रे माँ, बोला ब्राह्मण तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, मैं दृष्टा की थी, मैं सुबह जब महाभारत में भागवत गीता के इस शब्द को टीका लिख रहा था वो वहां में शब्द के ऊपर लकीर लगाई थी, और भगवान ने मेरी मूर्खता को देखते वहन करके कंधे के ऊपर उठा के मेरे घर में जो चीज नहीं थी लाके दे दी है, और जाके देखता है तो वो वहामी शब्द के ऊपर से लीक उतरी हुई है, ददामी शब्द उसका भगवान ने काट दिया है। ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, अपने भक्त के लिए भार स्वयं उठा के आते हैं। तो भगवत गीता को मैंने लकीर लगाई, भगवत गीता भगवान का स्वरूप है, भगवान का श्री विग्रह है, उसको काटने से भगवान के शरीर के ऊपर लकीर आई। तो भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, भगवान का वांगमय रूप है, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है, उसके शब्दों में भगवान के भक्त, भगवान का शास्त्र, भगवान का प्रसाद, भगवान की, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के ऊपर सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में गए थे। कुरुक्षेत्र में, आप कभी कोई कुरुक्षेत्र गया है, देखा है कुरुक्षेत्र को? कुरुक्षेत्र में बहुत सुंदर एक ब्रह्म सरोवर है, कोई 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा बहुत सुंदर सरोवर है। ब्रह्मा जी आदि ने उधर बड़ा तप किया था। ये तो त्रेता युग का, द्वापर युग का बहुत बड़ा महातीर्थ कुरुक्षेत्र है। उसमें उस जमाने में भी ग्रहण के दिन, अभी भी आज भी ग्रहण के दिन लाखों लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अपने सारे रानियों के संग में कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र कभी जाके देखना चाहिए, तो ब्रह्म सरोवर का दर्शन करके स्नान करना चाहिए। फिर वहाँ से थोड़ा आगे ज्योतेश्वर है, जहाँ भगवान ने भगवद गीता सुनाई थी। एक वो बहुत बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष, उसके नीचे भगवान ने गीता सुनाई थी। ये दूसरा स्थान देखने का है। और तीसरा, उधर ही निकट में 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वो स्थान है जहाँ भीष्म पितामह तीरों की सैया के ऊपर और सर सैया के ऊपर सोया हुआ है। और उधर ही अर्जुन ने बाण मार के जहाँ से गंगा को प्रकट किया, वो कुंड है जिसके अंदर से गंगा निकली थी और भीष्म देव के मुंह में गई थी। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात जाके दर्शन दिया था भीष्म पितामह को अंत समय में, जब वो प्राण त्याग रहे थे। ये 3-4 स्थान कुरुक्षेत्र में कभी जाके दर्शन करने। और भी बहुत भीष्म पंचक आदि जगहें हैं। 5 सरस्वती वहाँ बहा करती थी, किस जमाने में सरस्वती का प्रवाह कुरुक्षेत्र में हुआ करता था, तो वो स्थान बहुत सुंदर है। तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण, तो जब ये संदेश वृंदावन में मिला तो नंद बाबा भी वहाँ से गोप ग्वाल बालों को लेकर, यशोदा मैया, ये सब कुरुक्षेत्र में गए। अब यहाँ कुरुक्षेत्र में कृष्ण को माँ यशोदा और नंद बाबा मिला। नंद बाबा जब कृष्ण को मिला और कृष्ण को उठा के गोद में बिठाया, उस वक्त कृष्ण की उम्र कितनी थी, 100 साल से बड़े थे कृष्ण, दुनिया की दृष्टि से 100 साल से बड़े थे। लेकिन नंद बाबा ने ऐसे उठा के अपनी गोद में बिठाया, माता सूंघ रहा है, आंखों बह रहे दोनों के आंसू, कृष्ण के आंसू बह रहे और नंद बाबा के आंसू बह रहे। नंद बाबा से उठ के यशोदा मैया के, वो छोटे बच्चा जैसे उठाते ऐसे यशोदा कन्हैया को उठा लिया, माँ के स्तन से दूध निकल आया। 100 साल का कृष्ण है, इतना प्रेम से आपस में मिले। फिर ग्वाल बालों से भगवान श्री कृष्ण मिले, गोपियों से भगवान श्री कृष्ण मिले, तब रुक्मणी आदि गोपियां गई राधा रानी के पास विशेष रूप से मिलने के। रात को जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सोते हैं हमारे महल में, तो रात को गोपी गोपी राधा राधा करते रहते हैं, रहते इधर हैं, याद आपको करते हैं। ये क्या बात है, कैसी आप प्रेम और स्नेह से सेवा करते हैं। लेकिन भगवान ने भी कह दिया रानियों को, आए हुए ग्वाल बाल उनमें से मेरे बहुत सखा हैं और गोपियाँ सखियाँ हैं, उनकी सेवा करना। तो बहुत बड़ा प्रेम के साथ सुंदर दूध गर्म करके खीर बना के राधा रानी को रुक्मणी देने गई। गरम गरम खीर दे दी राधा रानी ने, दे दी तो उसने पी ली रुक्मणी। वहाँ से वापस आई और भगवान श्री कृष्ण का चरण सम्मान करने लगी, पाँव दबाने लगी। पाँव दबाती है तो देखती है पाँव के ऊपर फफूंदे हो गए, जल गए हैं पाँव। आप कहीं गए नहीं बाहर, प्राण ना थी आपके पाँव के ऊपर, ये कहाँ से फफूंदे हो गए हैं, ये जले हुए पाँव कैसे हैं? भगवान मुस्करा रहे हैं, बोला आप गर्म दूध अभी राधा रानी को पिला के आइए, आप उसको ठंडा नहीं किया, उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वो उसके दिल में मेरे चरण है, उसने जो दूध पिया ये मेरे चरण को जला दिया है उसने। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के हृदय में मैं बसता हूँ, उनको कष्ट होता है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। एक हरिदास ठाकुर नाम के बंगाल में भक्त हुए हैं, मुस्लिम के घर में पैदा हुए थे, घर जन्म उनका मुसलमान के घर में था, लेकिन बहुत बड़े भगवान के नाम उच्चारण के इतने बड़े जिज्ञासु थे। हरे कृष्ण महामंत्र का 300,000 का रोज जप करते थे। उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य की उपाधि दी कि भगवान के नाम जपने का आचार्य। और इतना बड़ा महान वो भक्त था कि उस वक्त में बंगाल के अंदर मुसलमानों के राज में कहा कि ये मुसलमान होकर राम राम जपता है, इसको 24 बाजारों के अंदर जाके कोड़े मारो। और जो नवाब था उसने बोला जब तक ये मर नहीं जाए तब तक इसको कोड़े मारते रहना। इसको कोड़े मार रहे हैं, कोड़े 24 बाजारों में कोड़े मारे, कोड़े मारने वाले थक गए। तब बोला महाराज आप मरते कब नहीं, आप नहीं मरेंगे तो हमको नवाब मार देगा। तो थोड़ी देर के लिए हरिदास समाधि में चले गए, नदी में फेंक के चले गए, लेकिन वो तो जीवित थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु बंगाल के अंदर बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। एक दिन महाप्रकाश लीला कर रहे, सब भक्तों को बुलाया, तब हरिदास को बुलाया, बोला हरिदास तुम्हें याद है जब आपको 24 मार्केटों में जाके कोड़े मार रहे थे? बोला हाँ महाराज। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ के ऊपर से कपड़ा दूर करके देखा, देखो उस वक्त ये कोड़े सब मैंने अपनी पीठ के ऊपर धारण किए, तुम्हारे को मैंने आलिंगन कर लिया था, कोड़े तुमको नहीं, तो तुम्हें तो कुछ हो नहीं रहा था, मैं तुम्हारी रक्षा करके कोड़े तुम्हारे मैं सह रहा था। तो इसको कहते हैं भगवान योग क्षेमम वहामि अहम्। तुम्हारे ऊपर कष्ट आता है तो वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हारी कोई कमी होती है तो मैं टोकरी उठा के सर के ऊपर मजदूरी करके तुम्हारे घर में लाके तुमको देता हूँ, लेकिन तुमको उसके लिए होना पड़ेगा अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना पड़ेगा, परिउपासते, और वो उपासना करनी पड़ेगी जिससे तुम मुझको चाहो, मुझसे कुछ चाहोगे, ऐसे तो सब दुनिया मुझसे चाहती है। रोज लोग, एक लोग हम कहीं गए थे बाहर, किसी ने बोला मंदिर बहुत बन रहे हैं, सत्संग बहुत हो रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि सब लोग भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर दे, भगवान को कोई नहीं चाहता है। और अनाउंसमेंट होती है भगवान हमारा बेटा अगर 12वीं में पास हो गया फर्स्ट क्लास में तो 100 रुपये का आपका भाव, 100 रुपये का भाव, भगवान को ट्यूशन 5,000 रुपया देता है। तो भगवान, भगवान को तो वो पढ़ाने वाले से भी हमने नीचे समझ रखा है, 100 रुपये वो भी पास हुआ तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो भगवान के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है कि जब तो कहां से हमारे चरित्र में फेरा आएगा, कि हमारा चरित्र में कोई परिवर्तन कब आएगा? जब भगवान की हम सेवा करेंगे। अब तो हम भगवान से सेवा चाह रहे, भगवान ये काम कर देना, भगवान वो काम कर देना, भगवान का, और काम भगवान से लेते हैं और मुफ्त का, कुछ कुछ देंगे कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये काम करके ना। अरे भगवान तो वैसे सबका काम कर रहा है, उसको सबकी जानकारी है। बेटा रोज जाके बोले बाबा बाबा कल मेरे को रोटी कल मिलेगी, तो बोलेगा रोज खा रहा है कोई, रोज क्या मेरा ईसाई क्या बोलता है, गॉड कैन वी गेट दी ब्रेड फॉर वीक, एक हफ्ते के लिए हमको भोजन मिलेगा। अरे तो कब से मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ये कह के मांगने की चीज है जाके कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान से भोजन मांगना है कि संसार में कुछ नहीं, भगवान को मांगना है, ये अनन्य से। तो भगवान योग क्षेमम वहामि अहम्, जो कमी है उसको पूरी करेंगे, जो भी कमी है आध्यात्मिक कमी है उसको पूरी करेंगे, जो आपके पास है उसकी बहुत रक्षा करेंगे। वो तो सबने सुना है नरसिंह मेहते का, ओ नानी बाई उसकी जो थी, भांजी हैं, भांजी थे द्वैती, तो मामा बन के सावल सा सेठ बन के जाके उसकी सारी पूरी पूर्ति की जो उसके पास कमी थी। तो भगवान अपने भक्तों की सारी कमी पूरी करता है। बहुत से ऐसे उदाहरण है कि भगवान ने क्या क्या नहीं किया है, टाइम क्या हो गया? हरे कृष्ण, 10 मिनट कम है 10 बजने में, हरे कृष्ण। चलो इसको आगे चलाएंगे। कल आया दाऊलाल जी, आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा, हमने आते ही पूछा दाऊलाल जी कहाँ है। दाऊ बलराम जी का नाम है, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया बोलते हैं, दाऊ बड़े भाई को कहते हैं दाऊ, दाऊलाल। दाऊलाल का पहला प्रश्न पढ़ो क्या है, चलो आज पहले एक प्रश्न का उत्तर देंगे फिर दूसरा, एक पहला पढ़ लो। हरे कृष्ण, एक पहला प्रश्न पढ़ लो बेटा। कर्म की परिभाषा क्या है? आठवें अध्याय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है किम कर्म उच्यते, कर्म किसको कहते हैं। आठवें अध्याय की शुरुआत का पहला श्लोक है, उसके अंदर भगवान से कृष्ण से अर्जुन पूछता है किम कर्म उच्यते, कर्म किसको कहते हैं, और भगवान उत्तर देते हैं भूत भाव उद्भव कर कर्म संग कर्म संज्ञा। कर्म क्या है? भूत भाव उद्भव कर। कर्म वो है जो आपको एक दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य करे। भूत भाव उद्भव कर, भूत कहते पांच भूतों का शरीर, भाव मतलब उसको लेने के लिए प्रेरणा दे। भूत भाव उद्भव कर कर्म संज्ञा, कर्म उसको कहते हैं जो करोगे तो उसका सुख या दुख भोगने के लिए एक शरीर लेना पड़ेगा, इसको कर्म कहते हैं। अच्छा करोगे तो, अच्छा करोगे तो देवता का शरीर मिलेगा, बुरा करोगे तो नीच शरीर मिलेगा, लेकिन एक और शरीर धारण करना। कर्म का अर्थ है दूसरे शरीर की तैयारी। ये सब कर्म है, लेकिन ये कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, स्वर्ग तक जाओगे, बुरे करोगे तो बुरी चूनी में जाओगे, ये सब कर्म है। लेकिन गीता में कर्म नहीं है, गीता में कर्म योग है। गीता में कर्म शब्द है ही नहीं, कर्म योग है। कर्म करने का मतलब उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। जब कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो शरीर लेंगे तभी तो कर्म का फल भोगेंगे ना, भोगेंगे किस इंद्रियों से भोगेंगे, तो इंद्रियों से भोगेंगे तो एक शरीर लेना पड़ेगा। तो कर्म करेंगे सो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, देवता का शरीर मिलेगा। एक आदमी है बहुत बड़े विद्यालय खुलवा दिया, बच्चों को स्कॉलरशिप देके पढ़ा रहा है, दूसरे जन्म में एजुकेशन का मंत्री होके आ जाएगा, उसको बड़ा ये फल मिलेगा कि बहुत बड़ा विद्वान होके आ जाएगा। तो अच्छा काम करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। कर्म शरीर के बंधन में डालने वाला है, इसलिए भगवद गीता में कर्म योग है। योग का मतलब है, जब योग शब्द कहेंगे इसका मतलब भगवान से जोड़ना। कर्म को अगर भगवान से जोड़ देंगे, कर्म को भगवान से जोड़ देंगे तो हम कर्म के फल से बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो उसको कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग में भी भगवद गीता में निष्काम कर्म योग की विशेष रूप से चर्चा है, और उसका बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अगर कर्म का गीता से निकालना है तो नवे अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है, यद करोसि यद स्नासि यद जहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम्। जो करते हो, जो देते हो, जो खाते हो, जो दान करते हो, जो यज्ञ करते हो, करते रहो लेकिन मुझे अर्पण करके। कृष्ण अर्पण मस्तु एक शब्द कह के करते रहो तो वो यज्ञ, वो कोई भी कार्य है, वो कर्म आपका कर्म योग हो जाएगा। सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य, सारे कर्म करो मई सन्यस्य, मेरे ऊपर छोड़कर। कर्म तुम करो लेकिन छोड़ो मेरे ऊपर। आत्मचेतसा, कैसे छोड़े? भगवान के ऊपर डालेंगे कैसे? भगवान की भावना में भावित होकर कर्म करो। अर्जुन तो लड़ाई कर रहा है, कर्म तो बहुत भीषण है, बहुत भीषण कर्म, उग्र कर्म है, मार रहा है, लेकिन किसके आदेश के ऊपर? भगवान के आदेश के ऊपर। इसलिए अर्जुन के ऊपर कोई कर्म के फल का बंधन नहीं पड़ेगा। जैसे कई यहाँ कल युद्ध हो जाता है, सेना को सेनापति आदेश देता है गोली चलाओ, दुश्मन के लाजारों लोग जो मारता है उसको भी चक्रवीर मिलेगा। काम क्या किया? मारने का किया, मिला क्या? पुरस्कार। क्यों मिला? क्योंकि उसने काम तो किया लेकिन अपने जो आला अधिकारी था उसके कहने के ऊपर आदेश किया, तो जवाबदारी उसके ऊपर है, उस सैनिक के ऊपर नहीं है। वही सैनिक छुट्टियों में घर चला जाए और जगह जायदाद के झगड़े के ऊपर किसी को डंडा मार के सर फोड़ दे, जेल में जाएगा। काम उधर मारने का कर रहा है लेकिन अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसको जेल भोगनी पड़ेगी। वहां बड़े के आदेश से करता है, हजारों लोगों को मारेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। तो भगवान के आदेश से, शास्त्र के नियम से जो कर्म करता है, शास्त्र के नियम से जो कर्म करता है, भगवान के आदेश से जो कर्म करता है, गुरुजनों के आदेश जो कर्म करता है, उसके कर्म के फल का वो बंधन नहीं पड़ता है, वो मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं। अपनी इच्छा से जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जो धंधा दुकानदारी कर्म हम कर रहे हैं इसका फल हमको स्वयं को भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा उसके जिम्मेवार हम हैं। आज का प्रश्न ये, कल दूसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब थोड़ा कीर्तन करें।